आकाश ने आस्तिक से रॉयल इंडस्ट्री और सिंघल की रियासत अपने नाम करने को कही थी, यानी कि आकाश आस्तिक के सब कुछ पर अपना अधिकार लेना चाहता था। उसकी बात सुनकर आस्तिक के चेहरे पर हल्की सिकन जरूर आ जाती है, लेकिन उस सिकन से आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ देर तक जब आस्तिक चुप रहा तो उसे चुप देखकर आकाश उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखते हुए बोला, क्या हुआ राजा साहब, अपनी बहू के लिए आप इतना भी नहीं कर सकते हैं क्या? मैंने तो सुना है कि आप माँ से बहुत प्यार करते हैं और माँ उससे बहुत प्यार करती है। आस्तिक अपनी जगह से खड़ा होता है और आकाश के बिल्कुल सामने आ जाता है। वो उसे देखकर कहता है, भूमि इस घर के लिए और हम लोगों के लिए क्या मायने रखती है, ये शायद तुम कभी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तुम्हें रॉयल इंडस्ट्री चाहिए तो मैं रॉयल इंडस्ट्री तुम्हारा नाम करता हूँ। कल से ही तुम उस कंपनी के नए CEO हो, हर पावर तुम्हारे हाथ में होगी। आस्तिक की बात सुनकर आकाश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से मिस्टीरियस हो जाते हैं। पर आस्तिक से ये बात कहाँ छुपी थी, उसने घूर कर आकाश को देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उम्मीद करता हूँ इन सब में तुम भूमि को तकलीफ नहीं पहुँचाओगे। वो सच में बहुत ज़्यादा मासूम है, भोली है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। प्लीज़ राजा साहब, मुझे ये सब मत बताइए, मेरी बीवी कैसी है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं पति हूँ उसका और अब तक तो मैं उसे अच्छी तरह से जान चुका हूँ। और हाँ, दूसरी बात, मैंने शादी को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मेरे और मेरी बीवी के बीच इंटरफेयर करेंगे। वो क्या है ना, मेरे लिए मेरे रिश्ते बहुत ज़्यादा पर्सनल हैं और मुझे उनमें किसी का टांग अड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे कि आपको पसंद नहीं है। ये बोलते वक्त आकाश के चेहरे पर जो डेविल स्माइल थी उसे आस्तिक अच्छी तरह से समझ सकता था और उसने आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तो ठीक है, कल से तुम रॉयल इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हो और अपना बिजनेस संभाल सकते हो। वैसे भी तुम अमेरिका में अपना बिजनेस संभालते थे तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर तुम्हें कुछ ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। फिर भी अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मैं यहीं पर हूँ हमेशा। ये कहता हुआ आस्तिक दगाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन आकाश उसे पीछे से रोकते हुए कहता है, आप अपनी बात पूरी नहीं कर रहे हैं राजा साहब, मैंने शायद कुछ और भी अपने नाम करने के लिए कहा है। अब डेविल स्माइल आस्तिक के चेहरे पर थी। वो जानता था उसका बेटा इतना भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो पलट कर आकाश को देखता है और कहता है, बिल्कुल, तुम्हें रियासत चाहिए, सिंघल का सिंहासन चाहिए था और मैं अपना वादा ज़रूर पूरा करूँगा। तुम्हें रियासत भी मिलेगी और सिंघल का सिंहासन भी तुम्हारा नाम होगा, लेकिन तब जब तुम भूमि के साथ उस पर बैठोगे। जैसे ही आस्तिक ने ये कहा, आकाश के चेहरे पर अभी तक जितनी भी खुशी या फिर जो भी इसकी प्लानिंग थी, सबके तोते उड़ गए। वो हैरानी से आस्तिक को देखता है और कहता है, ये क्या बकवास है, वो क्यों मेरे साथ सिंहासन पर बैठेगी? आपका बड़ा बेटा होने के नाते ये रियासत मेरी होगी और इस पर राज मैं करूँगा। उस लड़की का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन आस्तिक की मुस्कान ढीली पड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने हंसते हुए आकाश के कंधे पर हाथ रखा और उसे थपथपाते हुए कहा, माई डियर सन, इतिहास गवाह है, बड़े से बड़ा राजा महाराजा या बड़े से बड़ा आदमी भी कभी अकेला नहीं चला है, उसे हर कदम पर अपने साथी की ज़रूरत पड़ी है। अगर उसका साथी उसके साथ हो तो वो बड़े से बड़ा युद्ध जीत सकता है, वरना अकेला इंसान बिना लड़ाई के ही हार जाता है। रॉयल इंडस्ट्रीज दिमाग का खेल है, इसीलिए यहाँ पर दिमाग की ज़रूरत है, लेकिन ये रियासत की बागडोर यूं ही नहीं संभाली जाएगी। यहाँ की प्रजा तुमसे कुछ उम्मीद लगाई बैठेगी और उसे तुम्हें दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचना होगा, और ऐसे मुश्किल दौर पर राजा साहब के साथ एक रानी साहिबा तो होनी चाहिए ना। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आकाश ने चिल्लाते हुए कहा। तो आस्तिक हंसते हुए अपने दोनों हाथ बांधता है और कहता है, तुम्हें कौन कह रहा है अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, मैं अपनी रियासत की बात कर रहा हूँ और इस रियासत पर तुम अकेले राज नहीं करोगे। अगर भूमि तुम्हारे साथ होगी तो सिंहासन तुम्हारा नाम होगा, वरना अरुणिमा के प्यार के सहारे में आज तक ये रियासत संभाल ही रहा था, पर अब तो वो मेरे साथ है, आगे भी संभाल लूंगा। आकाश के हाथ मुट्ठी में कस गए थे। वो गुस्से में पैर पटकता हुआ स्टडी रूम से चला जाता है और उसके जाते ही आस्तिक के चेहरे पर एक मिस्टीरियस मुस्कान थी, पर उसने आकाश को जाते हुए देखा और अपने मन में सोचने लगा कि शायद आकाश के दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन क्या, ये अभी आस्तिक को समझ नहीं आ रहा था। आकाश वापस कमरे में आया तो उसकी नज़र बेड पर सो रही भूमि पर जाती है, जो दवाइयों की वजह से सो चुकी थी। वो उसे देखकर बोला, तुम्हारी औकात मेरे साथ खड़े होने की नहीं है और राजा साहब चाहते हैं कि तुम मेरे साथ सिंहासन पर बैठो। लेकिन तभी कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस मुस्कान आ जाती है और वो काउच की तरफ बढ़ जाता है। वो काउच पर बैठ जाता है और अपना सर पीछे की तरफ टिकाते हुए एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, नॉट बैड राजा साहब, अच्छा गेम खेला है आपने। और फिर अपना चेहरा सीधा करके भूमि को देखते हुए कहता है, इस शतरंज के खेल में वजीर को अपने साथ रखना होगा, सो माई डियर वाइफी, रेडी फॉर द गेम, एक सौदा हुआ है और दाव पर तुम लगी हो।